ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। रेलवे ने देश भर में 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत रेलवे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विशेष मौकों पर भीड़ के नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके सुचारू आवागमन की निगरानी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले एक सप्ताह तक शाम 4 बजे से 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। यह निर्णय यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वहीं प्रयागराज से पवित्र संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए कल प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 338 विशेष रेलगाड़ियां संचालित की गईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज मुंबई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उन उद्यमों पर पिछले 3 बजटों में विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत उपकरणों की खरीद के लिए बिना जमानत के 1 अरब रुपए का ऋण दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में निवेश करने वाले अच्छा मुनाफा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 नए आयाम जोड़े गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के 126वें स्थापना दिवस पर श्री प्रधान ने कहा कि देश के युवाओं को नौकरी की सुरक्षा, सभ्य जीवन और आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। श्री प्रधान ने कहा कि देश भर में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अलग फाउंडेशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन की स्थापना की योजना बनाएगी और उद्योग के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएगी। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस धनराशि का उपयोग अनुसंधान और नवाचार के लिए करें। पंजाब के मोहाली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राष्ट्रीय कृषि खाद और जैव विनिर्माण संस्थान में उन्नत उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत में विश्वास रखने का आह्वान किया और कहा कि कोई भी व्यक्तिगत और राजनीतिक हित राष्ट्रीय हित से बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है। श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत अब केवल सपना नहीं, हमारा लक्ष्य है। भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में पिछले साल जनवरी के मुकाबले 140% की वृद्धि हुई है। यह रिकॉर्ड 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस उपलब्धि में टेक कंपनियों एप्पल और सैमसंग का महत्वपूर्ण योगदान है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक स्मार्टफोन का कुल निर्यात 1,55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 56% अधिक है। भारत ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। रॉकेट ईंधन बनाना इससे काफी आसान हो जाएगा। इसके विशालकाय काया की वजह से रॉकेट ईंधन बनाने में तेजी आएगी। इस उन्नत प्रणाली का डिजाइन और निर्माण करके इसरो ने न केवल अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत स्पेस पहल के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत किया है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्य की राजधानी दिसपुर के बाहर कोकराझार में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद विधानसभा कक्ष में यह हो रहा है। पहली बार यह है कि जब सत्र राज्य की राजधानी दिसपुर से बाहर हो रहा है। बजट 10 मार्च को संसद में पेश किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण नक्शा का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भू अभिलेखों का निर्माण और अद्यतन करना है, ताकि भू स्वामित्व का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय ने नागरिकों को सतर्क बनाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। वडोदरा में महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें ने अपने पहले मैच में जीत दर्ज की है। दिल्ली ने मुंबई इंडियंस को और बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को हराया। कल गुजरात जायंट्स ने यूपरी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।